हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। वो किसी भी कीमत पर तारा को ढूंढना चाहता था। वही करिश्मा जी और उनके पति भी अब काफी ज्यादा परेशान हो चुके थे, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उनकी बहू को किसी भी तरह की कोई तकलीफ हो। और जबकि करिश्मा जी इस बात को अच्छी तरह से जानते थे कि उनकी बहू तो कोई आम लड़की है ही नहीं, वो एक परी थी, तो कहीं ना कहीं उन्हें अब तारा की ज्यादा चिंता सताने लगी थी। उन तीनों ने उसे पूरे के पूरे जंगल को छान मारा था। अलग अलग दिशा में जाकर वो तारा परी को ढूंढ रहे थे, क्योंकि उन लोगों ने डिसाइड किया था कि अलग अलग अगर वो इस बड़े से जंगल में तारा को ढूंढेंगे तो उन्हें तारा परी जरूर मिल जाएगी। लेकिन करिश्मा जी, अमरेंद्र जी और अमन उस पूरे के पूरे जंगल को अपनी शक्तियों के साथ साथ खुद भी पूरा छान मार रहे थे, लेकिन उन्हें तारा का नामो निशान तक नहीं मिला था और वो तीनों मायूस एक जगह पर खड़े हो गए थे। अमन का मुंह पूरी तरह से लटका हुआ था। तारा के बिना वो एक पल भी सांस नहीं ले सकता था, लेकिन अब उसकी तारा का उसे कहीं दूर दूर तक कोई भी पता नहीं लग पा रहा था, तो ये बात उसे अंदर अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। साथ ही साथ उस राक्षस के अंश यानी कि विक्रांत का डर सता रहा था कि कहीं वो उसकी तारा के साथ किसी तरह की कोई बदतमीजी ना कर दे, क्योंकि वो सब कुछ बर्दाश्त कर सकता था, लेकिन तारा के जिस्म पर वो किसी और आदमी, किसी और राक्षस या किसी की भी परछाई तक बर्दाश्त नहीं कर सकता था। तो अमन ने गुस्से से कसकर अपने दोनों हाथों की मुट्ठियों को बंद करके रखा हुआ था। कहीं ना कहीं करिश्मा जी और अमरेंद्र जी दोनों ही अमन की बेचैनी अच्छी तरह से महसूस कर पा रहे थे, लेकिन वो खुद पूरे जंगल में तारा को ढूंढ चुके थे, लेकिन तारा का नामो निशान वहां नहीं था, तो इसीलिए वो लोग खुद अब पूरी तरह से मायूस हो उठे थे। तभी अचानक करिश्मा जी ने अमन से कहा था, बेटा मेरी बात सुन, अगर तारा को ढूंढने में हमारी कोई मदद कर सकता है तो वो सिर्फ तेरे दादा महाराज है। तुझे जल्दी से जल्दी बगीचे में जाकर उनसे ही इस बारे में पूछना होगा। मुझे पूरी उम्मीद है वही तेरी मदद करेंगे और तारा बेटी तक पहुंचने में हमें रास्ता दिखाएंगे। और एक काम कर, अपने पिता को भी साथ ले जाओ। अपने बेटे से मिलकर काफी खुश हो गए, जैसे ही करिश्मा जी ने आइडिया दिया। अमन ने आगे बढ़कर खुशी से अपनी माँ को गले से लगा लिया था। वो तारा को ढूंढने के और तारा के खोने तक गम में वो ये बात तो पूरी तरह से भूल ही गया था कि उसके दादाजी महाराज हर प्रॉब्लम का हल जानते हैं। इसीलिए उसने करिश्मा जी का हाथ पकड़कर कहा था, मॉम आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे पूरी की पूरी उम्मीद है हमारे दादा इसमें हमारी मदद जरूर करेंगे। हम सभी बगीचे में जाएंगे और दादा से महाराज से मदद की गुहार लगाएंगे। तब अमन जल्दी से अपने पिता को लेकर बगीचे की ओर रवाना हो चुका था। बगीचे में पहुंचकर अमन ने जोरों से चिल्लाना शुरू कर दिया था, दादा महाराज, दादा महाराज बाहर निकलिए, मुझे आपकी बहुत ही ज्यादा जरूरत है, दादा महाराज मेरी मदद कीजिए। अमन की बातों में बेचैनी उसके पिताजी साफ महसूस कर सकते थे। बगीचे में कदम रखते ही अमन के दादाजी महाराज समझ चुके थे कि अमन किसी समस्या के तहत वहां आया है और क्यों चिल्ला रहा था। जैसे ही वो सामने आए, उन्होंने अपने सामने अपने बेटे को देखा तो वो भी भावुक हो उठे थे। और कुछ देर तक दोनों बाप बेटों का मिलन होता रहा था, लेकिन इस बीच अमन को एक एक पल काटना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो रहा था। वो बस जल्द से जल्द अपने दादाजी महाराज की मदद से अपनी तारा का पता लगाना चाहता था। और फिर उसने कहना शुरू कर दिया था, दादा महाराज माफ कीजिएगा, मैं आपको इस तरह से बीच में रोक रहा हूँ, लेकिन पिताजी से आप जब तक चाहें जब तक मिल सकते हैं, लेकिन अभी इस वक्त मुझे आपकी मदद की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। जैसे ही अमन ने रोने से शक्ल बनाकर ये कहा, उसके दादा महाराज कहने लगे थे, अमन सबसे पहले तो तुम शांत हो जाओ, अगर तुम इस तरह से छोटी सी बात को लेकर परेशान हो जाओगे तो आगे जिन्नातों के बड़े बड़े फैसले तुम कैसे लोगे, सबसे पहले तुम्हें खुद को शांत करना होगा। उसके बाद दादा महाराज ने आगे कहना शुरू कर दिया था, हम जानते हैं बेटा तुम क्यों परेशान हो, और तुम फिक्र मत करो, हम तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। ऐसा कहकर दादा महाराज हल्का सा मुस्कुराने लगे थे, मानो कि उन्हें पहले से ही पता था कि तारा के साथ ऐसा कुछ होने वाला था। कुछ देर तक अपनी आंखें बंद करने के बाद अमन के दादाजी महाराज ने अमन से कहा था, इस वक्त तारा बेटी कहीं और नहीं बल्कि पिशाचिनियों के जंगल में है, जो कि काली पहाड़ी के गुरु के अंदर ही आता है। या। जैसे ही अमन ने ये सुना, वो काफी ज्यादा हैरान हो गया था, क्योंकि उसने पिशाचिनियों के जंगल के बारे में कितनी ही सारी कहानियां सुन रखी थी और आज तारा वहां पर थी, तो इसका मतलब साफ था उसे अब पिशाचिनियों के जंगल में जाना ही होगा। तब अमन हल्का सा सोचते हुए बोला था, लेकिन दादा महाराज मैं पिशाचिनियों के जंगल में कैसे जा सकता हूँ, आप तो अच्छी तरह से जानते हैं उसे जंगल में जो कोई भी जाता है उसका क्या हाल होता है, तो वहां से पिशाच बनकर लौटता है या फिर वो जिंदा ही नहीं रहता है। अमन की बात सुनकर उसके दादा महाराज कहने लगे थे, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ पिशाचिनियों के जंगल में जाना कोई आम बात नहीं है, और वहां से आज तक कोई जिंदा बचकर भी नहीं आया है। लेकिन तुम भूल रहे हो, तुम एक आम इंसान नहीं हो, तुम एक जिन महाराज हो और तुम्हारे अंदर एक अलग तरह की ही शक्तियां हैं जिनका अभी तुम्हें पूरी तरह से एहसास नहीं है। इसीलिए शायद पिशाचिनियों का नाम सुनकर तुम्हारे मन में हल्का सा शक पैदा हो गया था कि तुम उनसे लड़ पाओगे या नहीं लड़ पाओगे। लेकिन सवाल यहाँ तारा बेटी का है। हमारे खानदान का वंशज उसके पेट में पल रहा है और याद रखना, वो राक्षस सबसे पहले उस अंश को खत्म करने की कोशिश करेगा और हो सकता है उसने उसके लिए कोई ना कोई रास्ता भी निकाल लिया हो। तो तुम्हें जल्दी से पिशाचिनियों के जंगल में जाना होगा और तारा बेटी को ढूंढकर उसे बचा कर लाना होगा। और हाँ, ये लो हम तुम्हें कुछ देते हैं, ये सफर में तुम्हारी सहायता करेगा। ऐसा कहकर अमन के दादा महाराज ने अपने थैले में से एक पानी की बोतल निकालकर, जो कि एक छोटी सी बोतल थी, वो अमन को पकड़ा दी थी और कहा था, ये एक जादुई पानी है जो तुम्हारी मदद करेगा। याद रखना, तारा बेटी को होश में यही पानी लेकर आ सकता है और साथ ही साथ उसके बच्चे को भी। अमन को कुछ समझ में नहीं आया था कि आखिरकार तारा को होश मिलने के लिए पानी की क्या जरूरत थी। तारा तो पहले से ही होश में थी, लेकिन खैर, उस वक्त अपने दादा से किसी तरह का कोई सवाल नहीं करना चाहता था, तो इसीलिए जल्दी से उसने अपने दादा महाराज से वो पानी की बोतल ले ली थी और अपने पिताजी और अपने दादा महाराज से आशीर्वाद लेता हुआ वो सीधा पिशाचिनियों के जंगल की ओर रवाना हो चुका था। वहीं दूसरी ओर अमित और मालिका काली शक्तियों की पहाड़ी से वापस बंगले में लौट आए थे। वहां जाकर जैसे ही वो अंदर गए, उन्होंने देखा कि आज उनकी हवेली में एक भी बॉडीगार्ड्स मौजूद नहीं था, जबकि अब अमित ने एक राजाओं की जिंदगी जीने का फैसला किया था, इसीलिए उसने कितने ही सारे गार्डों को अपने यहाँ पर तैनात किया था। लेकिन आज तो उसकी हवेली में उसे कोई भी गार्ड दिखाई ही नहीं दे रहा था। केवल कुछ नौकरानियां वहां पर थी, लेकिन एक भी मेल गार्ड यानी कि आदमी बॉडीगार्ड वहां नहीं था। जैसे ही अमित ने ये देखा, वो काफी ज्यादा हैरान हो गया था। और जब वो अंदर गया, अंदर जाकर उसने एक नौकरानी से पूछा कि हवेली के सारे नौकर कहाँ चले गए, केवल औरतें ही औरतें दिखाई दे रही हैं, कि आखिर माजरा क्या है। तब वो नौकरानी रोने लगी थी।
उसे नौकरानी को इस तरह से रोता हुआ देखकर अमित काफी हैरान हो गया था। कहने लगा था, हम तुमसे क्या पूछ रहे हैं और बदले में तुम हमें रोकर दिखा रही हो? आखिरकार तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? क्या तुम्हें सुनाई नहीं दिया हमने तुम्हें क्या कहा है? अमित की बात सुनकर वो नौकरानी कहने लगी थी, मालिक, हमने आपको कॉन्टैक्ट करने की कितनी कोशिश की, लेकिन ना तो आपका नंबर लग रहा था और ना ही आपका कोई कॉन्टैक्ट हो पा रहा था। आप नहीं जानते आपके जाने के बाद क्या हुआ है। आपके जाने के बाद मालकिन ने सभी आदमी लोगों को एक कमरे में बुलाया था और उसके बाद उसी कमरे से अभी तक एक भी आदमी बाहर नहीं निकला है।
क्या या क्या या 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 या?
जैसे ही अमित और मल्लिका ने ये सुना, उसका हैरानी के बारे में बुरा हाल हो गया था और जल्दी से वो लाल रंग के कमरे की ओर भागा था। वो अच्छी तरह से जानता था कि उसे डायन ने उन आदमियों को कहाँ रखा होगा, तो इसलिए जल्दी से अमित और मल्लिका जैसे ही उसे कमरे में गए, उन्होंने वहां जाकर देखा तो उनकी आंखें हैरत के मारे फटी की फटी रह गई थीं, क्योंकि जितने भी हवेली के नौकर जाकर आदमी थे वो सभी राख के ढेर में बदल चुके थे, क्योंकि उसे डायन ने सभी आदमियों को अपने जिस्म का लालच देकर उनके अंदर की जितनी भी शक्तियां थीं वो सारी अपने अंदर खींच ली थीं, जिसके बाद वो आदमी पूरी तरह से राख के ढेर हो चुके थे। जैसे ही अमित ने उनकी लाश देखी तो उसकी आंखें हैरत के मारे फटी की फटी रह गई थीं और उसने कहना शुरू कर दिया था, आखिरकार सब लोगों के साथ इस तरह की हरकत करने के बाद भी अब वो कहाँ जा सकती है। अमित को इस बात का दूर दूर तक कोई याद ताज़ा नहीं था कि वो डायन अब इस वक्त दो गरीब मजदूरों को जंगल में लेकर गई है और वहां जाकर वो उनके साथ अपनी मनमानी कर रही थी। और अभी कुछ ही देर हुई थी कि तभी वो डायन अपनी संतुष्टि का लेने के बाद बड़े ही स्टाइल से झूमती हुई अमित के बंगले में आ गई थी। जैसे ही अमित को डायन के आने की खबर मिली तो वो जल्द से जल्द उससे बात करना चाहता था। उसने सोच लिया था कि वो सब सीधे मुंह बात करेगा। अमित ये बात अच्छी तरह से जानता था कि काली शक्तियों के गुरु के दिए हुए ताबीज के कारण वो डायन उसकी ओर आकर्षित नहीं होगी और ना ही वो उसे किसी तरह का रिश्ता बनाने के लिए फोर्स करेगी, तो कहीं ना कहीं अमित को इस बात का सुकून था, इसीलिए वो जल्दी से उसके पास गया था। और जैसे ही वो उसके पास गया था वो उसकी हैरानी से देखे गया था, क्योंकि उस डायन का पूरा जिस्म काफी ज्यादा ओपन था और आज उसकी चाल में कुछ अजीब अलग ही तरह की लचक सी थी, क्योंकि उसके जिस्म को संतुष्टि मिल चुकी थी। उसने जो दो गरीब मजदूरों का अपना निशाना बनाया था, उन गरीब मजदूरों ने बेहोशी की हालत में, क्योंकि वो बेहोश नहीं थी लेकिन वो बेहोशी का नाटक कर रही थी, उसे गरीब मजदूरों को तो यही लगा था कि ये लड़की बेहोश है, बेहोशी की हालत में उससे उन दोनों ने कितनी ही देर तक रिश्ता बनाया था। और जब उनका मन भर गया, तब जैसे ही वो जाने लगे तभी उस डायन ने अपनी आंखें खोल ली थी, और जैसे ही उन्होंने उस लड़की को अचानक से ऐसे उठते हुए देखा तो वो परेशान हो गए थे और जल्दी से वहां से भागने लगे थे, लेकिन उस डायन ने उनका रास्ता रोक लिया था और कहने लगी थी, तुम लोगों का मन भर गया है तो तुम लोग जा रहे हो, लेकिन मेरा क्या, मेरा मन कौन भरेगा, ऐसा कहकर उस डायन ने उन दोनों गरीब मजदूरों को फोर्स करना शुरू कर दिया था। और जब तक उन गरीब मजदूरों की जान नहीं चली गई, उस डायन ने उन्हें एक पल के लिए भी नहीं छोड़ा था। और अच्छी तरह से अपनी आत्मा को शरीर की संतुष्टि करने के बाद वो वापस से बंगले में लौट आई थी। जैसे ही वो वहां आई, अमित ने उससे पूछना शुरू कर दिया था, हवेली के सारे नौकर कहाँ गए हैं, क्या किया है तुमने उनके साथ। जैसे ही अमित ने सीधे सीधे ये सवाल किया, वो डायन आंखों लाल सुर्ख करके अमित की ओर देखने लगी थी और कहने लगी थी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इस तरह से बात करने की, आखिरकार तुम कहना क्या चाहते हो, क्या मैंने उनके साथ कुछ किया है। हाँ, उसे डायन की आंखों का रंग बदलते हुए देखकर अमित को अपनी सख्ती का एहसास हो गया, तो जल्दी से बात बदलते हुए बोला था, जान तुम्हें गुस्सा होने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तो सिर्फ तुमसे यही जानना चाहता हूँ, आखिरकार हवेली के सारे नौकर कहाँ भाग गए हैं, क्या तुमने उन्हें कहीं काम पर भेजा है। जैसे ही अमित ने बड़ी ही नरम आवाज में ये कहा, वो डायन मुस्कुराने लगी थी और कहने लगी थी, हाँ स्वामी आपने बिल्कुल ठीक सुना है, मैंने उन्हें खाना लेने के लिए भेजा है, अलग अलग होटल में। जैसे ही उसने ये कहा, अमित उसकी मक्कारी पर उसे घूर कर रह गया था, लेकिन अभी वो उस डायन को किसी तरह का कोई भी गुस्सा नहीं दिखा सकता था। वो अच्छी तरह से जानता था वो डायन कितनी ज्यादा पावरफुल है, अभी तो फिलहाल उसे उस डायन से बचकर अपने मकसद को पूरा करना था, वो केवल यही सोच रहा था। वहीं दूसरी ओर विक्रांत रंधावा की माँ यानी कि राक्षस के अंश की माँ ने अपना तप करना शुरू कर दिया था, और जैसे जैसे वो तप कर रही थी, तारा परी को अलग अलग तरह के झटके लग रहे थे, मानो कि वो उस तप की शक्ति को बर्दाश्त करने की कोशिश कर रही थी। तारा परी बार बार तड़प रही थी। विक्रांत की माँ ने उससे साफ साफ कह दिया था, अगर तुझे इसके साथ जिस्मानी रिश्ता बनाना है तो बेहोशी की हालत में ही बनाना होगा,